आज हम छठी कलीसिया में जाएंगे और वो कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, प्रकाश वाक्य उसका तीसरा अध्याय 7 पद से लेकर के 13 पद तक। सो ये कलीसिया एक विश्वास योग्य कलीसिया, अगर इस कलीसिया का कहेंगे तो परमेश्वर इस कलीसिया को एक विश्वास कलीसिया के द्वारा देख रहा है। हम पिछली बार देख रहे थे कि इस प्रकार से वो पीरियड को हम देख रहे थे, कैसे समय विभाजन हुआ और समय विभाजित होते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ा। सो लगभग 1530 से लेकर के आगे बढ़ते हैं और उस कलीसिया को हम देखते हैं। इससे पहले पिछली बार हमने 1530 में देखा था, जिसमें मार्टिन लूथर को देखा था कि मार्टिन लूथर ने किस प्रकार से, और हम इन कलीसियाओं का अध्ययन करते हुए हम उस बातों को भी देखते चले आ रहे हैं जो ऐतिहासिक है और जिसमें परमेश्वर ने समय में अपने लोगों को खड़ा किया है और उन्होंने रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार का और विशेष कार्य किया है। कलीसिया इतिहास में आरंभ से इस बात को हम देखते हैं, और मैं पहले भी बोला था, लेकिन आरंभ से ही नहीं, लेकिन अगर हम जब पुराने नियम में भी जानते हैं तो परमेश्वर ने अपने इस कार्य को समय समय पर किया है कि जो धर्म सुधार का कार्य है जिसमें उसने लोगों को सुधारा है। बहुत सारे राजा हुए जब भटक गए लोग और भटक कर परमेश्वर से दूर हो गए या मूर्ति पूजा करने लगे या उन्होंने कोई ऐसी चीज को स्थापित किया, तो परमेश्वर ने समय पर समय में ऐसे राजाओं को खड़ा करा कि उन्होंने साथ किया, और एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य लौट करके अपने सृष्टिकर्ता के पहचाने और उसके पास आकर उसकी सच्चाई से आराधना करे। मनुष्य लौट कर फिर कर सृष्टिकर्ता को पहचाने, उस परमेश्वर को पहचाने जिसने मुझे और आपको सृजा है, और उसकी वो उसका वो पा सको और किसी और का नहीं। आज समस्या यह है, मनुष्य सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान रहा, बहुत सारे मनुष्य हैं और वो सृष्टिकर्ता की आराधना नहीं कर रहे, सृष्टिकर्ता की उपासना नहीं कर रहे, लेकिन सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। सृष्टि की उपासना, ये फर्क है। हमें सृष्टिकर्ता की उपासना करना है, उसको समझना है, उसको पहचानना है, लेकिन संसार की आंखें आज भी बंद हैं और वे सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, और आप जानते हैं सृष्टि किस रीति से है। सो हमें इस बात को समझना है। तो जब हम इन बातों को देखते हैं तो परमेश्वर इसी तरीके से कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा है, और यहां पर जैसे फिलदेल्फिया कलीसिया एक विश्वासयोग्य कलीसिया है, और विश्वासयोग्य कलीसिया होने के नाते ये धीरे धीरे किस प्रकार से वो परमेश्वर उसको प्रोत्साहित कर रहा है। ये सच है, ये शहर जो है लगभग प्रभु यीशु मसीह के आने से 200 साल पहले ये शहर स्थापित किया गया था। जिस समय स्थापित किया था उस समय अधिकतर इस नगर में, शहर में यूनानी संस्कृति का बोलबाला था। लोग अधिकतर ऐसे लोग थे जो यूनानी संस्कृति को लेकर आगे चल रहे थे, लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यूनानियों से आके पहले यहूदी धर्म को स्वीकार किया था, फिर उसके बाद उसमें से कुछ ऐसे थे जो मसीह बन गए थे। और परमेश्वर ने इसके शहर पर दृष्टि की, लेकिन एक बात और थी, ना केवल यूनानी लेकिन ये कहा जाए कि यहूदी जनसंख्या का अधिकाई से यहूदी जनसंख्या थी, और उसमें प्रभु अपना कार्य कर रहा था। उस स्थान पर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया था। यहूदियों के लिए यह बहुत मुश्किल था कि वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, लेकिन परमेश्वर ने अपने सुसमाचार का प्रभाव डाला और लोगों ने विश्वास किया और एक कलीसिया वहां पर स्थापित की, जिस कलीसिया को उन्होंने नाम दिया फिलदेल्फिया कलीसिया, जिसको परमेश्वर ने कहा यह विश्वास योग्य कलीसिया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हमें देखते हैं कि इस कलीसिया के बारे में बहुत कुछ है। पहली बात 7 पद में आगे जो उस लिखने वाले के बारे में है, जो लिखवा रहा, कौन लिखवा रहा है, मैंने पहले बताया था कि यह दर्शन यूहन्ना का दर्शन नहीं है, यह परमेश्वर का दर्शन है। मैंने पिछली बार जब आरंभ किया था तो बार बार इस बात को समझाया था कि यह दर्शन यूहन्ना का दर्शन नहीं है, यह दर्शन परमेश्वर का दर्शन है, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है, पुत्र ने स्वर्गदूत को दिया, स्वर्गदूत ने यूहन्ना तक पहुंचाया और यूहन्ना ने मुझे और आपको लेखनी में दिया। ये इसका क्रम है। परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर अपने कलीसिया के बारे में रखता है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का स्वप्न है, कलीसिया परमेश्वर का ड्रीम है, स्वप्न है, कलीसिया परमेश्वर की पूर्वकालीन योजना है। इससे पहले कि सृष्टि बन जाए, सृष्टि हो, परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया थी। वो जानता था कि मैं क्या करूंगा, और ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कलीसिया को ही परमेश्वर ने, जब बाद में शत्रु शैतान के आक्रमण के द्वारा कलीसिया बिगड़ गई या लोग बिगड़ गए, लोग पाप में आ गए, तो प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा। पाप के कारण मनुष्य दंडित हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वरदान, प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। और इसलिए जब मनुष्य पाप के कारण दंडित हो चुका था, उस पर दंड की आज्ञा लग चुकी थी, और वो अपने कर्म द्वारा वो उद्धार नहीं पा सकता था, छुटकारा नहीं पा सकता, प्रयास तो कर रहा था, व्यवस्था को पूरा करने द्वारा वो छुटकारा नहीं पा सकता था। उसके बाद देखते हैं परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिया, उसको भेजा, उसने मेरे और आपके लिए संसार के लिए अपने आप को बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो प्रभु के राज में शामिल हो और उस कलीसिया का एक भाग बन जाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो प्रभु के राज में शामिल हो और उस कलीसिया का भाग बन जाए। और परमेश्वर ने इस तरह से अपनी कलीसिया, जिसको दुल्हन भी नाम दिया गया है, और प्रकाश वाक में हम उसको दुल्हन के रूप में बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो ये है, अब इस प्रकार से अपने उस दर्शन को किस प्रकार से पहुंचाना चाह रहा है। अब उसने इन सातों कलीसियाओं में वो चीजें बताई है जो हम पिछली बार देख चुके हैं, किस प्रकार से ये समय चलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और तब एक दिन प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, जैसे आज भी हम इस बात को देख रहे हैं और देखेंगे। लेकिन जो लिखवा रहा है, जिसने यहां तक पहुंचाया, प्रभु यीशु मसीह, के बारे में है लिखा है, जो पवित्र व सच्चा है और जिसके पास दाऊद की कुंजी है। जो पवित्र और सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर को जानने के लिए हमें परमेश्वर के गुणों को जाना जरूरी है, परमेश्वर के चरित्र को जाना जरूरी है, परमेश्वर के स्वभाव को जाना जरूरी है। और इसलिए क्योंकि हम इस बात की खोज में नहीं रहते कि परमेश्वर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, मैं अक्सर बोलता हूं, बाजार जाते तो गेहूं के लिए हम गुण अपने दिमाग में लेके जाते हैं, कपड़ों के लिए कुछ गुण हम अपने दिमाग में लेके आते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात होती तो मनुष्य उस गुण के अनुसार परमेश्वर को नहीं खोजता, इसीलिए वो भटक रहा है। तो पहली बात, परमेश्वर पवित्र है, और इसीलिए वो मुझसे और आपसे भी मांग करता है, वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और बार 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 पवित्रता के बारे में मांगता है। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, अपने पवित्र लहू से खरीदा है, वो मेरे और आपके जीवन से पवित्रता चाहता है। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते, हमारा जीवन संसार में रहता है, पाप में रहता है, बुराई में रहता है, छल में रहता है, धोखे में रहता है, हमारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं, गालियां निकलती हैं, अलग अलग तरह से हम जीवन को व्यतीत करते हैं, घृणा है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, लड़ाई है, छोटी छोटी बातें। लेकिन जब हम प्रभु को जान लेते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वो भावना उत्पन्न करता है, हमारे मन को, मस्तिष्क को, सब कुछ को शुद्ध और पवित्र करते हुए उस पवित्रता की ओर आगे बढ़ाता है। और इसलिए मेरे और आपको पवित्रता की खोज करनी है, पवित्रता में आगे बढ़ना है, क्योंकि जिसके हम जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसके हम अनुयायी हैं, वो पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। दूसरी बात, वो सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, जीवन, सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई इस परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। वो सत्य है, उसका वचन सत्य है, जो कुछ उसने कहा है वो हां और आमीन के साथ पूरा होना है। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर में लिखा है, जो कुछ भी उसके मुंह से निकला है वो सब कुछ पूरा होगा। परमेश्वर ने अगर वचन में कुछ कहा है तो बिना पूरा वो नहीं डलेंगी, नहीं हटेंगी। और इसलिए हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, और मेरे और आपके अंदर भी उस परमेश्वर का स्वभाव, उस परमेश्वर का गुण उत्पन्न होना है। मेरे और आपके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि सत्यता मेरे और आपके जीवन में पाई जा सके, और अधिक हम उसके लिए प्रयास करें, और अधिक प्रार्थना करें, और अधिक परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के वचन की सहायता से, और विश्वासियों के संगीत द्वारा हमारा जीवन दिन पर दिन पवित्रता में और सत्यता में आगे बढ़ता है, जो बहुत ही जरूरी है। तो कहता वही है, लेकिन तीसरी बात कहता है, उसका अधिकार की बात करता है। अब ये जो पद है आगे चल के, वो जो कहता है उसकी दाऊद की जी, वो खोलता है जो कोई बंद नहीं कर सकता। ये पुराने नियम का यशाया नबी के पुस्तक, एक यशाया नबी उसका 22 है, उसका 22 पद है, वहां पर ये पद आया है, और इसी का कोटेशन यहां पर है। वहां भी परमेश्वर इसी तरह से कहता है, क्यों, कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या थी, परमेश्वर अपने उस अधिकार को, जो पुराने नियम में हम देख रहे हैं, किस प्रकार से उसने दाऊद को चुना है, और दाऊद को चुन करके उसने किस प्रकार से उस अधिकार को बांटा है। तो उस समय में एक राजा था, और उस राजा के जो मंत्री था उसके साथ उसको चाबी दी गई, ताकि जो सारा खजाना है, जो राजा खजाना है वो खजाना उस समय देख उस कोई भी उसको देख सकता था। यशायाह उसके 22वें अध्याय में, मैं समय के कारण उस पर स्थल पर नहीं जा रहा हूं, घर में आप पढ़ सकते हैं उसको। क्या मतलब है? परमेश्वर कह रहा है कि जो कुंजी मेरे हाथ में है उसको जब मैं बंद करना चाहूं मैं बंद करता हूं। दो और दृष्टि है, एक तो पृथ्वी के लिए है और एक और स्वर्ग के लिए है। पृथ्वी के लिए जो आगे जल्द वर्णन करता है, जो द्वार मैंने खोला, परमेश्वर के हाथ में, हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है। कलीसिया का ये इतिहास आरंभ से रहा है, ना केवल कलीसिया लेकिन आरंभ से जो भी परमेश्वर को सच्चाई से पालन करते थे वो सताए गए। कई बार लोग प्रचार करते हैं, माफ कीजिएगा, और बहुत कहते हैं अरे जिस दिन से तुम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे कोई दुख नहीं आएगा तुम्हारे पास, कोई बीमारी नहीं आएगी तुम्हें, कोई घटी नहीं होगी तुम्हें, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। और लोग इसी तरह से इस विश्वास से प्रभु के पीछे चलते हैं, हमें ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान। रोटी मकान जरूरत है लेकिन केवल यही सब कुछ नहीं है। बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह को पालोगे तो तुम्हें कोई सी चीज की घटी नहीं होगी, तुम बहुत लाडसा बहुत सेठ बन जाओगे, 10-10 गाड़ी तुम्हारे पास रहेंगी, तुम ऐसे चलोगे, बाइबल कहीं नहीं कहती। परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए आया है, ये सच है। परमेश्वर हमें दरिद्रता से निकालता है, परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमारी प्रतिदिन की चिंता करता है, परमेश्वर हमें सुधी लेता है, बीमारियों में वो हमारे साथ रहता है, दुख में हमारे साथ रहता है, क्लेश में हमारे साथ रहता है, घटी में हमारे साथ रहता है, और हमारे साथ रहते हुए वो अपने उपस्थिति द्वारा हमारे को चंगाई भी प्रदान करता है, हमारी घटी कमियों को भी पूरा करता है, सब कुछ वो करता है। हमारा सबसे बढ़कर वो हमारे साथ रहता है और हमें अपने हाथों द्वारा संभालता है। सो हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को समझना चाहिए और इसलिए भ्रम से बचना चाहिए। बार 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 सुसमाचार की बात आई, जब मैं सुसमाचार के बारे में बोलता हूं तो वही है, समय में बहुत सारी तरह के सुसमाचार हैं, जो प्रॉस्पर्टी गॉस्पल है, संपन्नता का सुसमाचार है, तुम उस पर विश्वास करो सब कुछ हो जाए। हमें सावधान रहना, बाइबल ऐसे नहीं बताते। हमें परमेश्वर को सच्चाई से जाना है और परमेश्वर के पीछे सच्चाई के साथ चलना है। तो उसके पास अधिकार है, स्वर्ग की कुंजी उसके पास अधिकार है। वो कहता है पृथ्वी पे उसके पास अधिकार है, स्वर्ग पर उसका अधिकार है, कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है अब वो परमेश्वर जिस जो सर्व अधिकारी है, जो भी परिस्थिति हम देख रहे हैं आज संसार में, चाहे मसीहों के बीच में को सतावनी का सामना करना है। कई बार सोचते हैं परमेश्वर सामर्थी, परमेश्वर तो क्यों नहीं सतावनी को दूर कर देता। नहीं, परमेश्वर की योजना अलग है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता कल और क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो बाइबल पहले बताती कि आने वाले दिन में ये सब कुछ और बढ़ता चला जाएगा, और कुछ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो अंत तक विश्वास में को थामे रहेगा वो परमेश्वर के राज में जाएगा। सुसमाचार सारी दुनिया के लिए है, उसने सारी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान करा, लेकिन ये निर्भर है मेरे और आप पर कि हम कितना दिन विश्वास करके, कितना दिन उन कठिन परिस्थितियों में करके उसके साथ चलने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमारा विश्वास कहां का विश्वास है, कैसा विश्वास है? तब वो कहता है कई बार हम लोग परमेश्वर को गलत नहीं समझते हैं, हम लोग उसको सोचते हैं कि वो ऐसा वैद्य है कि हमारी सारी बीमारी एक मिनट में ठीक कर दे। नहीं नहीं ऐसा वो ऐसा का नहीं, जरूर वो हमारे साथ रहता है, दुआ कर देता है, चंगाई देता है, सब कुछ देता है, लेकिन वो हमारे मन के अनुसार काम नहीं करता। हम उसको अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं, हम तो अपने मन के अनुसार, हमें अपने आप को उसके दीदा में डालना है, उसके सबमिशन में डालना है और उससे कहना है प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है, आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, और उसके अनुसार जब हम ये करते हैं तब हमारा विश्वास और मजबूत होता है, तब हमारी निर्भरता और दिखाई देती है, तब हम वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है और तब परमेश्वर हमारे से खुश होकर प्रश्नों कर हमारे लिए मदद करने तैयार होता है। तब आगे चल के वो कहता है मैं तेरे कार्य को जानता हूं, कह रहा मैं तेरे कार्य को जानता हूं। क्या उस समय सतावनी थी? नहीं थी सतावनी, बहुत सारे लोगों ने कष्ट आया, लेकिन ये पीरियड ऐसा पीरियड था, ये पीरियड ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में होकर के परमेश्वर ने कई सारे ऐसे लोगों को खड़ा किया जिनके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा, जिनके समय में सुसमाचार या परमेश्वर का काम बहुत ही अधिकाई से हुआ। अगर आप 100 साल पहले के इतिहास को देखेंगे, थोड़ा मैं अभी जाऊंगा उसमें, तो देखें हम किस प्रकार से परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया। यही काल उसने कहा मैंने द्वार खोल रखा है, और उस समय में इससे पहले हम देख रहे थे मार्टिन लूथर के समय में देखा था, उससे पहले और लोगों इस बात में देखा था, जिनको कॉल पार्क के बारे में देखा था, जिसको 86 साल की उम्र में उसको खड़ा खड़ा जला दिया था और उसने कहा मैंने 86 साल तक परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को देखा है, मैं उसका इनकार नहीं करूंगा, और उसने अपने प्राणों को दे दिया था। हम इन लोगों को समय बाय समय देखते चले आ रहे हैं, इसलिए ताकि हम जान जाए कि मसीहत में परमेश्वर मेरे से और आपसे क्या चाहता है और उसने क्या करा है, और लेकिन वे लोग विश्वास में किस तरह से खड़े रहे। विश्वास संसार से हमें अलग रखता है। तब वो कहता है मैं तेरे कार्य को जानता। कौन से कार्य को जानता? तू कर रहा है सुसमाचार प्रचार का कार्य है, भलाई का कार्य है, सच्चाई का कार्य है, क्योंकि ने सत्य परमेश्वर को जाना है, पवित्रता को जाना है। और मेरे प्रियो वो उन कार्यों के द्वारा वो उद्धार नहीं पाना चाह रहे हैं। उन कार्य के द्वारा वो अपने आप को धर्मी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। उन कार्यों के द्वारा वो अपनी धार्मिकता को प्रमाणित करना चाह रहे हैं। हम कई बार भले काम इसलिए करते हैं, अच्छे काम इसलिए करते हैं कि लोग हमें धर्मी समझें। लेकिन जब हम धर्मी बनाए जाते हैं, परमेश्वर जब हम अपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी बना देता है, तब हमारे सारे कार्य, क्योंकि उसने हमें धर्मी बनाया है, उसकी महिमा के लिए होते हैं। मैं दान देता हूं इसलिए दान देता हूं, और लोग कहें ये बहुत दान देने वाला, बहुत धर्मी व्यक्ति। नहीं 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 ये नहीं। लेकिन मैं इसलिए, चूंकि प्रभु ने मुझे धर्मी बनाया है और प्रभु की योजना में मैं रहता हूं, प्रभु से मैं प्यार करता हूं, उसके वचन से प्यार करता हूं, अब मेरे जीवन में जो कार्य होते हैं उसकी महिमा के लिए होते हैं। तो कहता है मैं तेरे कार्य को जानता हूं, इन सारी परिस्थितियों में किस प्रकार से तू अपने कार्य के द्वारा उसकी महिमा कह रहा हूं, कह रहा है, और मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, यद्यपि तेरी सामर्थ थोड़ी है। सामर्थ थोड़ी है क्या मतलब है? सच है, जो बाहर दिख रहा है उस बाहर दिखने के बीच में तू बहुत ही, तेरी सामर्थ कम है। हमें अब भारत देश में या पूरे विश्व में आपका मान लीजिए, मसीह लोगों को लोग बड़ी आसानी से सता लेते हैं, परेशान कर लेते हैं, जरूर, क्योंकि उनके पास सामर्थ कम है। वो लड़ने वाले नहीं है, वो अधिकार दिखाने वाले नहीं है, उस तरह से करने वाले नहीं है, उस तरह से नहीं है। दूसरे साथ एक मारेगा कोई दो दस मार देंगे, वो अलग रहा। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दया, धर्म, प्रेम, ये सब कुछ दिखाई है। तेरी सामर्थ थोड़ी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। पहली बात, ये सब कुछ होने के बाद भी तेरी सामर्थ थोड़ी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। कलीसिया वो कलीसिया थी जो वचन का पालन करने की तत्पर थी। मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर में कितनी अधिक वो इच्छा है कि हम परमेश्वर आपके वचन का पालन करें, ये प्रश्न है। कितना अधिक मैं परमेश्वर के वचन के प्रति भूख रखता हूं, कितना अधिक मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं, जाना चाहता हूं। एज्रा के बारे में लिखा हुआ है, एज्रा के बारे में लिखा हुआ है कि एज्रा ने, एज्रा नवी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 10 पद, उसमें लिखा हुआ है कि एज्रा ने परमेश्वर की व्यवस्था को अध्ययन करने में, पालन करने में और सिखाने में मन लगाया। 3 चीजें, पहली बात अध्ययन करना, उसने परमेश्वर के वचन को, शास्त्री था, जानता था, लेकिन फिर भी निरंतर वो परमेश्वर के वचन को और अधिक जानना चाहता था, और न केवल जानना चाहता था, ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसने पालन किया। पर तीसरी बात उसने सिखाया। कई बार हम सिखाना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, सब कुछ करना, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे अंदर पहली 2 चीजें हैं? क्या हम पहले 2 बातों कर रहे हैं? जो परमेश्वर के वचन का पालन, तू उसके विश्राम के दिन का आदर करना, कितना अधिक हमारे अंदर है? चाहे कुछ भी हम परमेश्वर के भवन में पहुंचे, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की वासना कर सके परमेश्वर के लोगों से। वो कह रहा है तूने परमेश्वर के वचन का पालन किया। और मेरे प्रियो, सच में ये मेरे और आपका एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन का निरंतर पालन कर सके। दूसरी बात कहता है, पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तेरी सामर्थ थोड़ी है, तेरे सामने विरोध आया, तेरे सामने कठिनाई आई, तेरे सामने परीक्षाएं आई, तेरे सामने सब कुछ आया, तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और मेरे परमेश्वर का वचन कहता है जो इस पृथ्वी पे मुझे, दूसरों के सामने मुझे मान लेगा, उसको मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा। कई बार हम विश्वासी मंडली में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब अकेले आते हैं, गांव में है, देहात में है, हम किस प्रकार से परमेश्वर को मानने के तैयार, मुश्किल होता है। अब आने वाले दिन में लोगों को बपतिस्मा लेना है, क्यों हम बपतिस्मा लें? हमें कैसे क्या, अरे हमारे घर वालों को छोड़ देना पड़ेगा, हमें ये होना पड़ेगा, हमें वो चीज छोड़ देनी पड़ेगी, हमें नहीं नहीं हमें समझना है परमेश्वर वचन क्या कहता है, किस रीति से हम परमेश्वर के वचन का आदर कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के वचन को पालन कर सकते हैं, हमें इस बात को देखना है। परमेश्वर हमें संसार और संसार की चीजों से अलग करता है, संसार के लोगों से, हाँ वो लोग जो हमारे विश्वास के लिए आने कारण कई बार हमें उनसे अलग होना पड़ता है, हमें अलग होना पड़ता है, कई बार हमें अपने संबंधियों से अलग होना पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है जो कोई मुझसे अधिक अपने अन्य लोगों प्रिय जाने, अपने वो प्रिय जाने, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो लोग, जो जब तक अपना क्रूस ना उठाए तो मेरे पीछे नहीं हो सकता। बार बार परमेश्वर वचन सिखाता है, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने उसके नाम का इनकार। अब मैं बताना चाहता हूं, हम सीखना चाहते हैं सारी चीजें, कि ये ऐसा काल था, ऐसा पीरियड था जबकि परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे लोगों को खड़ा किया, वो लोग जो प्रभु को सेवा में तैयार किए गए। और आपने नाम सुना होगा जॉन वेस्ली, जॉन वेस्ली जिन्होंने मेथोडिस्ट मिशन आरंभ किया, और यहाँ पर एक अस्पताल है जो नूर मंजिल वो उन्हीं के नाम से और उनके द्वारा है, और इन्होंने प्रभु को जाना। ये परमेश्वर के वचन के अच्छे शिक्षक और प्रचारक थे, और इन्होंने इस बात को देख करके तब इन्होंने बाद में 31 अक्टूबर 1517 में मार्टिन लूथर ने, जो एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट था, उन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद 95 प्रश्न लिखे और उस कैथेड्रल के गेट पे लगा दिए और उसके उत्तर मांगा। और तब उसके बाद उसको उन्होंने उनसे रोमन कैथोलिक प्रीस्ट से हटा दिया, निकाल दिया। वहीं से हम ये देखते हैं प्रोटेस्टेंट शुरू हुआ। अभी परसों चौथे यहां पर 2 दिन के लिए कुछ पासवान कुछ सेवक लोग आए थे, और मैंने उनसे 2 प्रश्न पूछे। अब सोच लीजिए किस प्रकार के सेवक हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कितना जानते हैं, कि मसीह में कौन से 2 मुख्य समूह हैं। एक दो को छोड़कर नहीं बता पाए, उन्होंने कभी अध्ययन नहीं करा। आपसे पूछ सकते हैं, आप क्यों नहीं मूर्ति को पूछते, फलाने तो करते हैं। तो जब तक आप ना जाने आप नहीं बता सकेंगे क्या फर्क है, कैसे अलग हुए हम, किस तरीके से। और मैंने पिछली बार बहुत अच्छी तरह समझाया था इस बात को। तो उस समय में पहले था जॉन वेस्ली, फिर इसके बाद विलियम कैरी का अपने नाम लाल वाली बाइबल है। सो बाइबल सोसाइटी जो बाइबल देती है वो विलियम कैरी के समय की। विलियम कैरी जब भारत में आए थे वो बहुत ही बीमार थे, बीमार उनके क्या, और उनके को बार बार मना करा जाता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है भारत में। और उन्होंने आके बहुत सारा काम किया यहाँ पर, के द्वारा जो नारी का पहले नारियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, उन्होंने उस चीज को आरंभ किया कि नहीं। और उसके बाद जब वो यहाँ पर आ भारत में, और उस समय सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ की भाषा फर्क है। उन्होंने संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, लैंग्वेज को सीखा, भाषा को सीखा, और तब उन्होंने एक समूह को तैयार किया, और उस समूह ने ये बाइबल को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया। लगभग 230 साल हो गए पहले उस समय में। ये वो समय था जब किस प्रकार से द्वार खुला था और परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा था। अगर वो बाइबल उस समय में अनुवाद हिंदी में ना होती, मेरे और आज आपके हाथ में बाइबल ना होती, परमेश्वर ने अपनी योजना में होकर करा। पिछली बार हम देख रहे थे पंडित रामान भाई के बारे में, जिन्होंने मराठी भाषा में सबसे पहले बाइबल का अनुवाद किया है महाराष्ट्र के, उनके बारे में। बीच बीच में इसलिए सारी चीजों को मैं आपके सामने शेयर करता हूं ताकि हमें मालूम हो कि कलीसिया जो चल रही है इतने सालों से, इसमें क्या कुछ हो रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, किस प्रकार से इसको इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार से लोगों को समय समय खड़ा कर रहा है। विलियम कैरी, जॉन वेस्ली, डेविड लिविंगस्टन एक ऐसे सेवक हुए जिनको प्रभु ने अफ्रीका का बोझ दिया, और अफ्रीका को बोझ देने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर सेवा करी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो लोग चाहते थे, उनके घर के लोग कि वो अमेरिका में, वहां पर आके उनकी बॉडी को दफनाया जाए, लेकिन लोगों ने माना, तो उनका हृदय निकाल करके अफ्रीका में दफनाया गया, और देह पूरी उनकी दूसरे स्थान पर दफनाई गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन पूरी रीति से उस स्थान पर सुसमाचार देने के लिए लगा दिया था। बहुत सेक्रीफाइस उन्होंने करा। ऐसे बहुत सारे, एक और का नाम बोलूंगा, डीएल मोडी का मैं अक्सर नाम लेता हूं, जो 1837 से लेकर के 1899 तक, ये ऐसे संसार के बहुत अधिक बड़े प्रचारक थे। और मैं मोडी के बारे में बोलता हूं आपसे, कई बार बताया, उन्होंने ही कहा था, या तो तुमको पाप परमेश्वर के वचन से अलग रखेगा, या परमेश्वर का वचन तुमको पाप से अलग रखेगा, या परमेश्वर का वचन तुमको पाप से अलग रखेगा, या पाप तुमको परमेश्वर के वचन से। उन्होंने इस बात को कहा। और ये बहुत गरीब परिवार से, 8 भाई बहन थे, और 8 भाई बहन होने के नाते इनके घर का इनका संचालन होना बहुत मुश्किल था। तो इनकी माँ ने क्या कहा, ठीक है तू चाचा के पास चला जा। वो अपने चाचा के पास चले गए, और चाचा की कॉबलर की दुकान थी, मोची की दुकान थी, शूज की दुकान थी, और उनके साथ काम करने लगे। और करते करते उस बाद में तब वो उनके एक मित्र ने उनको ले गया एक प्रेयर मीटिंग में, और वहां पर उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को सुना, और वहां पर उन्होंने विश्वास किया। फिर वो एक और प्रेयर मीटिंग में गए, कॉटेज मीटिंग में, और कॉटेज मीटिंग में एक वक्ता प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते करते उन्होंने किसी ने वहां बात करने वाले ने किसी ने कह दिया, हमने प्रचार तो बहुत सुना है लेकिन प्रचार देखा नहीं, अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन में वो प्रचार दिखाई नहीं दिया। डीएल मोडी वापस गए, उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया, रात भर परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करी, और कहा प्रभु मुझे वो व्यक्ति बना कि मैं सचमुच में न केवल प्रचारक बनूं लेकिन लोग मुझे देख करके प्रचार को समझ सकें। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने उसको ऐसे बनाया और वो ऐसा यूज हुआ। सो ऐसे लोग उस समय में, द्वार खुला था, और इन लोगों, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने 4 ही नाम आपके सामने बताया। ये पीरियड वो पीरियड था जब परमेश्वर ने कई लोगों को खड़ा किया है, और धीरे धीरे सुसमाचार फैलता गया। अभी डॉक्टर बिली ग्राम को याद करते हैं, कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई, डॉक्टर बिली ग्राम, आई थिंक 4 या 5 साल पहले उनकी डेथ हुई। और वो ऐसे प्रचारक थे कि एक सभा में, एक उनके समय में हजारों, भारत ने उनको बाद में आना बंद कर दिया था, भारत में 2-3 बार आए, बाद में उनको आना बंद कर दिया था, मैं उनको वीजा देना बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी एक सभा में हजारों लोग आते थे और हजारों लोग प्रभु को, अपने जीवन को प्रभु को दे देते थे। ये था परमेश्वर को अद्भुत रीति से साधन सुसमाचार प्रचार करते थे। कोई बड़ा ड्रामा नहीं करते थे, कोई हीलिंग मीटिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, कोई ड्रामा नहीं, केवल सुसमाचार प्रचार करके और लोग वचन के द्वारा प्रभु के पास आते थे। परमेश्वर ने ऐसे लोग खड़ा किया। मेरे भाई ये कलीसिया का, इस कलीसिया का पीरियड है, जो कलीसिया जिसके लिए कहता है कि मैंने तेरे द्वार खोल रखा। अच्छा है समय पर समय में हम इन चीजों के, इनके बारे में पढ़ें, जाने। अगर आपको अंदर रुचि है, आप में साथ, हम आपको सामग्री देंगे, आप पढ़ करके और अधिक जान सकते हैं। सो यहां पर हम इस बात को देखते हैं, तो वो कहता है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तब 9 पद में, जो शैतान की सभा के हैं और अपने आप को यहूदी कहते हैं जबकि है ही नहीं। पिछली बार भी समझा चुका हूं कि बहुत सारे यहूदी लोग थे जो आके मिल जाते थे और वो कहते थे कि हम नहीं, हम यहूदी हैं, अपने आप को दावा करते थे, लेकिन वास्तविक क्या थे? वो कहता है शैतान की सभा के, उनके जीवन में कोई परमेश्वर की व्यवस्था का काम नहीं था या उद्धार का काम नहीं था या कुछ नहीं, वो झूठ बोलते थे, अपने आप को दिखाते थे। और मेरे प्रियो, ये सच है, मुझे और आपको देखना है कलीसिया में, बहुत बार कलीसिया में केवल हम नामधारियों के जीवन को व्यतीत करते हैं। हमें नामधारियों के जीवन को नहीं व्यतीत करना, हमें परमेश्वर को सच्चाई के साथ स्वीकार करके सच्चाई के साथ उसके पीछे चलना है, सच्चाई के साथ। ना हम ठंडे रहते हैं ना हम गर्म रहते हैं, गुनगुने रहते हैं। गुनगुनापन परमेश्वर को पसंद नहीं है और कहता है मैं तुझे आगे चल के इसी प्रकाश वाक्य में कहता है मैं तुझे उगलने पर हूं। यदि हमने प्रभु पाया है तो हमारे अंदर जोश होना चाहिए, हमारी साक्षी होनी चाहिए, हमें समर्पित होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बहाने बहुत सारे हंसते हैं, बहुत सारी चीज, लेकिन उन सारी चीजों को हमें एक तरफ अलग करना चाहिए। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे से क्या अपेक्षा करता है, परमेश्वर से मैं बहुत कुछ अपेक्षा करता हूं और करती हूं, लेकिन परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा करता है। और मेरा और आपका जीवन एक उत्साह से भरा होना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलने वाला चाहिए। और इसीलिए वो कहता है आगे चल करके, वो फिर उसे वो बात को दोहराता है, वो कहता है कि ऐसे हैं और मैं उनको बाध्य करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में झुकें और जाने कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। क्या होगा, एक समय आएगा जो लोग आज यीशु मसीह का इनकार करते हैं या यीशु मसीह के नाम लेकर के बहाने के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, झूठा जीवन व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर क्या करेगा? जब वो आएगा तो आने के बाद न्याय के सामने, वो उन विश्वास सामने, जिन विश्वासों ने परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान किया है, कष्ट सा है, क्लेश सा है, कुछ यातना सही, उनके सामने वो झुकेंगे। परमेश्वर अपने चुने हुओं को नीचे नहीं करेगा, वो उनको ऊंचे करेगा। हो सकता है इस पृथ्वी पे आपको लोग ना समझते हो, परिवार वाले ना समझते हो, मित्र ना समझते हो, आपके पड़ोसी ना समझते हो, तरह तरह की बातें करते हो सकता है, ये हो सकता है कि प्रभु के पीछे चलने में इन सारी चीजों की कठिनाई का सामना करना। हमने भी उस चीज को अपने जीवन में, अपनी सेवा में अनुभव किया है। जब हम 12 बंकी थे, हमने बहुत महसूस किया, अनुभव किया, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को झुकने नहीं देता। वो कह रहा है ये लोग जो तुम्हारा ठट्टा कर रहे हैं या अपने आप को झूठी रीति से कर रहे हैं, वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरे प्रियो, कितने गर्व की बात है, क्या हम इस बात को देखते हैं? अब हम घमंड के साथ उछले नहीं, लेकिन हम अपने आप को ऐसे तैयार करें कि कल वो दिन हमारे जीवन में आ सके, कि हमारे जीवन में उससे आने का दिन और कोई नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपने कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना है? आपने किस शिक्षा से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु उद्धार कर सकता है? आप किस शिक्षा से प्रभु के पीछे चल रहे हैं? कितना समर्पण है आपके जीवन में? कितनी परमेश्वर के वचन? तब वो आगे फिर कहता है, इसलिए 10 पद में, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया, वो वचन जो धीरज के साथ, मैं धीरज धरे हूं। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, बाइबल में कहा है, और परमेश्वर अन्यायी नहीं जो मेरे और आपके काम को भूल जाए जो हमने उसके नाम से किए और जो कर रहे हैं। परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर दंड देने में भी जल्दी नहीं कर रहा। परमेश्वर ने मुझे और आपको ग्रेस पीरियड में रखा, ये पीरियड अनुग्रह का पीरियड है, अनुग्रह में होकर उसने मुझे और आपको बचाया है, अनुग्रह में होकर वो मेरे को और अवसर दे रहा है, अनुग्रह में होकर मेरा आपको अवसर दे रहा है कि हम अपने आप को सचेत कर लें, सावधान हो जाए और उसके पीछे चल सके। अनुग्रह में होकर उसने संसार को ये अवसर दिया है ताकि उस यीशु के बलिदान को पहचान सके, उसके पुनरुत्थान को पहचान सके, उसके सब कुछ को पहचान सके। मेरे प्रियो, ये सच है, हम जानते हैं कई बार ये बातें लोगों की समझ से परे रहती हैं और मीडिया भी इन बातों को आपको कहने की अनुमति नहीं देगा। दो बार मेरे सामने ऐसा मौका आया मीडिया के सामने, लेकिन मैंने उनसे साफ कहा, मैंने कहा ये हमारा संदेश है। उन्होंने कहा आप इसमें थोड़ा सा बदल दीजिए। हमने कहा थोड़ा बदल देंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, फायदा ही क्या है फिर। नहीं, जो सच्चाई है प्रेम के साथ, खराई के साथ, हमें उन लोगों को देना है, सौंपना है। वो कह रहा है कि तेरे नहर के वचन क्या, मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा रखूंगा। ये प्रतिज्ञा है, ये समझ लिए प्रॉमिस है, एनकरेजमेंट है, प्रोत्साहन है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। कठिनाई आ सकती है, परीक्षा आ सकती है, परख आ सकती है, लोग तेरे विरोध में होते हैं, लेकिन कह रहा मैं तुझे ऐसे में बचा के रखूंगा। परमेश्वर हमें बचाने वाला है, वो हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और इससे हमें कभी परेशान नहीं होना, घबराना चाहिए। हमारा हृदय परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को पालन करने वाला होना चाहिए। आपस में एक दूसरे, हो सकता है लोग हमारे साथ धोखा करें, हो सकता है लोग हमारा अपमान करें, हो सकता है लोग हमारे हमें ठगें, कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ रह के हमें फिर भी अपने प्रेम में, उसके प्रेम में, उसकी पवित्रता में, उसके भाईचारे में, हमें मसीह के प्रेम में जीवन को व्यतीत करना है। हम सब कुछ को परमेश्वर के हाथ में छोड़ करके निरंतर आगे बढ़ते हैं। हम अपने पड़ोस के साथ बैर नहीं करते, अगर वो निंदा करते तब भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन पर आप दया कीजिए, इनको आशीष दीजिए। अगर कोई बीमार तन के घर में, तब भी हम उनके हाल चाल पूछेंगे, हम ये नहीं कहेंगे अरे बड़ा अच्छा, नहीं 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 अगर हमारे पड़ोसी चाहे हमें वो हमारे को कुछ भी कह रहे हो, बुरा चाह रहे हो, लेकिन हम भलाई करने के लिए उनके तैयार रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये अच्छा है, चाहे जैसा भी हो, हमारा परमेश्वर ने हमें अलग प्रकार के लोग बनाया, संसार से अलग है, और हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को, हमारी इच्छाओं को प्रेरित किया है। यद्यपि हमें पुराने स्वभाव से, पुराने चरित्र से सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है और हम उस विजय में होकर आगे चल सकते हैं। तब वो कहता है घड़ी को बचा रखूंगा, अर्थात उस घड़ी सारे संसार पर आने वाली कि पृथ्वी के निवासी परखे जाए, गिराने वाला उस समय आने वाला है। अब ये छठा काल जो है, ये छठी कलीसिया है, हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कई और निकटता में ला रही है, और इसलिए वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। सो ये सारे परमेश्वर ने इस काल की कलीसिया को एक तरह से इस्तेमाल किया है कि ताकि सुसमाचार का कार्य बहुत फैल सके। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा यह है, जब तक संसार में सारे कोने कोने में सुसमाचार नहीं फैल जाएगा, उसका आना नहीं होगा। लेकिन चाहे कितने भी विरोध हो रहे हैं, परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। आज मैं सोच में, मैं न्यूज पेपर को देख रहा था, क्योंकि अभी वायरस बढ़ रहा है, और शायद कल परसों हमारे यूपी में एक नया प्रोटोकॉल आने वाला है, नया निर्देश आने वाले हैं, इसमें क्या करना है, मैं इसका साधन नहीं मानू कलीसिया फिर यहाँ पर मिल पाएगी नहीं मिलेगी, पिछले दिनों में कितने समय रहे, पर भी थे, हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, हम बाइबल अध्ययन को साथ मिलकर करा है, प्रार्थना साथ मिलकर करी है। क्यों प्रभु धन्यवाद इस टेक्नोलॉजी के लिए जो परमेश्वर ने आज दे रखी है, और उसको हम परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते। इसमें गलत भी है, गलत चीजें भी है, उससे भी हमें सावधान रहना है। बहुत बार यूट्यूब में ऐसी चीजें थी जो हमें छूने नहीं चाहिए, ऐसे सेवक भी हैं जो सचमुच में हमारे मस्तिष्क को भ्रमित करते हैं। यूट्यूब हर प्रश्न का उत्तर नहीं है, YouTube और Google ये सारी प्रश्नों का उत्तर नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर बाइबल है। हमें इसमें ये क्या कह रही है, ये अगर इससे हटकर कोई भी चीज है तो हमें उसके साथ समझौता नहीं करना, अपने जीवन को उसमें नहीं डालना, लेकिन क्योंकि बाद में बहुत नुकसान हो जाएगा, बाद में बहुत नुकसान। तब वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, ये सच है, जो परखे गए हैं उनके उनको वो उत्साहित कर रहा है। तब आगे चल के कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरे मुकुट को छल। क्या हमारे पास है? हमारे पास उस धार्मिकता का जीवन है, हमारे पास वो स्वर्गीय धन है जिसको परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, धन्य आशा है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि मरने के बाद भी तुम मेरे साथ अनंत काल तक में राज करने पाओगे। इस पृथ्वी पे तो मर जाओगे, लेकिन उसके बाद भी इस पृथ्वी से चले जाओगे, पर परमेश्वर हमें नए स्वर्ग में, नए स्थान में प्रवेश कराएगा, और हम सच में प्रभु के साथ रहेंगे। वो धन्य आशा है हमें, देख क्या चीज है जिसको हमें थामना है। संसार का पैसा, पैसा आ जाए कल चला गया, चला जाएगा। कितने लोग हैं, हम इतने लोगों को जानते हैं जिन्होंने पैसे को ऐसा जमा करा, दांत से काट काट के उन्होंने जमा करा, लेकिन वो संसार से ऐसे चले गए सब कुछ छोड़कर। कितने लोगों को हम जानते हैं, अगर मैं उनकी कहानी सुनाने लगूं, और उसकी वजह से ना हम किसी सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं, ना हम खुद खाने पाते हैं, ना किसी देने पाते हैं, ना प्रभु को देने पाते हैं, ना प्रभु का के लिए हमारा हाथ खुलता है, हम किसी रीति से, बस किसी रीति से। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं प्रभु के सेवक अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए, जब अलेक्जेंडर ग्रेट सिकंदर महार जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसने कहा था कि मेरे कफन से दोनों हाथों को बाहर निकाल देना और उस पर लिखवा देना, सिकंदर महान खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ आया खाली हाथ जा रहा है। हम क्या लेके जाएंगे, हम क्या चीज को थामेंगे, क्या धन, क्या भवन, क्या बिल्डिंग, क्या ये, क्या संसार की चीजें, गाड़ी, ठीक है संसार में चीजें हैं जो हमें चाहिए, लेकिन यही सब कुछ प्राथमिकता नहीं है। कल एक भाई सुबह सुबह मेरे पास आ गए मिलने के लिए छत्तीसगढ़ से, और उन्होंने दिखाया कि ब्रदर हमारे पास जगह नहीं, हम छत्तीसगढ़ में फलानी जगह में, तब दिखाने लगे पेड़ के नीचे आराधना करते हैं, उनके पास भवन नहीं है, पेड़ के नीचे आराधना कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमें दिया। पर हम देखें तब वो क्या चीज को थामेंगे, वो विश्वास जो उन्होंने प्रभु पर किया, वो जीवन जो प्रभु मसीह में दिया, वो धार्मिकता जो प्रभु में, इसको हमें देखना है, इसको खोजना है, उसको हमें थामना है और भी देख, और तब हमें आगे बढ़ते हैं। तब आगे चल के कहता है थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। अगर तू उस पर ध्यान नहीं देगा तो जो प्रभु ने तुझे मुकुट दिया है और देगा, जिस मुकुट जो शोभा का प्रतीक है, महिमा का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, कहता है उसको जो तेरे पास उसको थामे रहे, कोई छीन ना पाए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर का एक खंभा बनाऊंगा। खंभा पिलर, पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है हर भवन में, अगर पिलर ना हो तो भवन ठह नहीं सकता। अब यहां पर जितने मोटे मोटे आपको दिखाई दे रहे हैं सब पिलर हैं, सब खंभे हैं, इन्हीं पर सब वजन रुका हुआ है, सब है। कितना अधिक कह रहा है, और पिलर पे नाम लिखने के लिए कई जगह आप बाहर जाएंगे, दिल्ली में भी आप जाएंगे, वहां पर कितने ऐसे खंभे बने हुए हैं जहां पर उन शहीदों का नाम लिखे हैं जिन्होंने अपने आप को युद्ध में या भारत को स्वतंत्र करने में अपने प्राणों की निछावर किया है, उनके नाम लिखे हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुझे क्या कह रहा है, जो जय पाए मंदिर का एक स्तंभ बनाऊंगा, वो मुझे और आपको एक खंभा बनाए, स्तंभ बनाएगा, ठीक है, वो वहां से फिर कभी बाहर ना निकलेगा, उस मंदिर से वो बाहर ना निकलेगा, अर्थात परमेश्वर मुझे और आपको निरंतर अपनी उपस्थिति में बनाए रखेगा, निरंतर परमेश्वर के साथ मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। कितनी सुंदर बात है, इसीलिए लिखा है हम उसको देखेंगे जैसा वह हम उसको देखेंगे, हम उसके साथ राज करेंगे, हम उसके साथ 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, ये सारी चीजें परमेश्वर वचन में है, कहता है और कह रहा है मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर का नाम, अब जो हम कुछ नामों से जानते हैं लेकिन वो बहुत अद्भुत नाम हैगा, उसका अद्भुत परमेश्वर, जो भी नाम उस समय परमेश्वर का सामने आएगा नाम, और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का, जो नया यरूशलेम है उसका नाम लिखा जाएगा। हमें इस पृथ्वी में बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे कुछ हैं, उनका अलग अलग नाम है, मनुष्य बदल देता है लेकिन कोई बात नहीं है ना, लेकिन वो नाम परमेश्वर के द्वारा दिया जाएगा, वो नया यरूशलेम जिसकी हम आशा करें, 20-22-21 पद में प्रकाश वाक्य में वर्णन है, वो कह रहा है परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। सोच लीजिए वो मुझे और आपको खंभा बनाएगा और उस खंभे में नए यरूशलेम का नाम लिखा होगा, उस खंभे में परमेश्वर का नाम लिखा होगा, उस खंभे में वो कह रहा है कि अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। लिखने वाला प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, उसने उस क्रूस के मृत्यु पर लहू बहा करके मेरे और आपको अपने आप बना लिया, लेकिन जब हम उस स्थान पर जाएंगे कितनी सुंदर बात होगी, और उस नाम पे फलाने नाम पे खंभा आपका लगा है उस पे ये सारी चीज लिखी होंगी, क्या नाम प्रभु देगा हम नहीं जानते। अभी जो माता पिता देते हैं नाम, वो नाम खत्म हो जाता है कुछ साल बाद, कितने लोग अपने परदादा को याद रखते हैं, कितने लोग उससे पहले को याद रखते हैं, मुझे तो याद है, मैं अपने दादा को मिला हूं, उनको जानता हूं, है ना, लेकिन उससे पहले के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन याद है। पर ये चीज वो जो सनातन की है, क्योंकि हम सनातन काल तक परमेश्वर के साथ राज करेंगे, सनातन काल तक उसकी उपस्थिति में रहेंगे। अद्भुत परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर, कितनी अद्भुत आशीष है, वो कितना अधिक उसने कहा है कि अगर हम अपने आप को थामे रहेंगे जो परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए इतना अद्भुत काम करेगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, जब अगर हम अनंत काल के बारे में सोच रहे हैं तो फिर क्यों इस संसार में 60 साल 70 साल 80 साल के लिए हम विचलित हो, परेशान हो, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन का आदर और सम्मान करें, क्यों ना विश्वास में जो विश्वास हमें दिया है उसको थाम करके हम आगे बढ़ें, क्यों ना हम उस पवित्रता और सत्यता की खोज करके उसके जीवन में लेके आगे बढ़ें। परमेश्वर मुझे और आपका इनकरेज करना चाहता है। सो ये छठी कलीसिया है, जो कलीसिया जिस कलीसिया में परमेश्वर ने अपने द्वार को खोल रखा है, आज भी उसका सुसमाचार फैल रहा है, फैलता चला जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर आगे करेगा। लेकिन अब क्या है, पर हम उस समय की निकटता में है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। पहले कहता है मैं चोर के सदृश आ जाऊंगा तीसरे अध्याय में, अब कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, फिर बीसवें पद में कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं, अब द्वार पर आ जाएगा। समझिए तो क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप इन कलीसियाओं द्वारा हम देख रहे हैं कि प्रभु का आगमन नजदीक होता जा रहा है। वहां से शुरू हुआ पूरा इतिहास। जब मैं इन कलीसियाओं को इस बार अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, सुना, अध्ययन करा, मैंने देखा कैसे परमेश्वर कहां से और कितने लोग हैं जो उन काल में किस प्रकार से परमेश्वर के विश्वास में बने रहे और उन्होंने कठिनाइयों को सहा, लेकिन परमेश्वर कैसे संभाला। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, सार्वभौमिक परमेश्वर है। आने वाले दिन में जो कलीसिया की सदस्यता में आने चाह रहे हैं, यह प्रभु के समर्पित करके अपने जीवन को उसका आज्ञा का पालन करना चाह रहे हैं, मेरे और आपके लिए एक चुनौती है, न केवल चुनौती लेकिन प्रोत्साहन है। चुनौती यह है कि हम सच में किस समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं।